मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, औचित्य तत्व अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। औचित्य तत्व। भारतीय दृष्टिकोण से जिन पूर्वगामी मानदंडों का विवेचन किया गया है, उनके बीच तथा उन सब में औचित्य का विशिष्ट योग आवश्यक है। अनुचित अलंकार प्रयोग, अनुचित रीति, अनुचित उक्ति, अनुचित अर्थ तथा रस में अनुचित वर्णन, इन सब का सौष्ठव नष्ट कर देता है। अतः इन सिद्धांतों में औचित्य का समावेश आवश्यक है। आचार्य क्षेमेंद्र ने इसी कारण औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका कथन है, अलंकारा स्वत्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो अलग तत्व हैं, पर रस सिद्ध काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर ही निर्भर करती है। अतः औचित्य प्राण है। जब शरीर में प्राण है, तभी अलंकारों और गुणों की शोभा टिकती है तथा उसमें रस का संचार हो सकता है। पर प्राणों से रहित होकर उसमें उपर्युक्त कोई भी विशेषता नहीं रह जाती है। अतः मूल तत्व औचित्य है, जिसके होने पर काव्य में अन्य विविध गुणों और चमत्कारों का विकास होता है। इसी बात को और पुष्ट करते हुए क्षेमेंद्र ने इस अति सूक्ष्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे कहते हैं, महाकवेरप्यति सूक्ष्म तत्व विचार हर्ष प्रमदमेतुक्तम। अतः औचित्य काव्य का अंतरंग तत्व है, इसके बिना अन्य कोई गुण या विशेषता महत्वहीन हो जाती है। इस औचित्य तत्व से रहित होने के कारण ही महाकवि कालिदास के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य में शंकर पार्वती के श्रृंगार वर्णन की निंदा की गई और गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा, जगत मातु पितु शंभु भवानी ते ही सिंगार न कहूं बखानी। इसी औचित्य तत्व की अवहेलना करने पर केशव दास कृत रामचंद्रिका के प्रकृति वर्णन तथा वस्तु वर्णन तीव्र आलोचना के पात्र बने और उन्हें हृदयहीन कवि की उपाधि मिली। उन्होंने अपने चमत्कार के फेर में पढ़कर राम के लिए कह डाला कि वासर की संपत्ति उलूक ज्योना चितवत, अर्थात विरह व्यथित राम को उल्लू बना डाला। इतना ही नहीं, प्रातःकालीन सूर्य की वर्णन करते हुए जहाँ उसे कमलिनी प्राणनाथ लालमणि के किरणों से तागों से बुना हुआ इंद्र का छाता, प्राची दिशा रूपी सिंदूरी के मस्तक में सिंदूर तिलक कहा, वहीं उसे खून से भरा हुआ कापालिक काल का खप्पर भी कह डाला। सुंदर वर्णन के बीच यह विभत्स रूप अनुचित है। अतः औचित्य का ध्यान न रखने के कारण केशवदास लांछित हो गए। पद्माकर के की अनेक पंक्तियां अनुप्रास के अनुचित मोह के कारण शोभाहीन हो जाती है। उदाहरणार्थ, कूलन में केली में कछारण में कुंजन में क्यारिन में कालीन कलील किलकांत है। कहे पद्माकर परागन में पौनहू में पानन में पीकन में पलासन पंगत है। यहाँ पीकन शब्द अलंकार के मोहवश है, उसका अर्थ औचित्यपूर्ण नहीं लगता। आधुनिक युग के काव्य में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जहाँ औचित्य का ध्यान नहीं रखा गया और काव्य फीका पड़ गया है। मैथिली सरन जी ने साकेत में सूर्योदय का वर्णन करते हुए नवम सर्ग में लिखा है, सखी नील नभस्तर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौनक तिशेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। यहाँ नभस्तर लिखने से निकलने वाली ध्वनि अनुचित लगती है। इसी प्रकार हंस मोती चरता नहीं है, चुगता है। पशु घास चरते हैं, पक्षी दाना चुगते हैं, चरते नहीं। इसी प्रकार नई कविता में शब्द प्रयोग, लय, बिंब आदि की स्वच्छंदता के कारण अनेक रूपों में अनौचित्य का बोलबाला है। कहीं रुचि को विकृत करने वाले प्रसंग हैं, कहीं फूहड़ बिंबों की योजना है और कहीं शब्दों के अनुचित प्रयोग। आज औचित्य पर विचार ही नहीं किया जाता। ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, विकृति आदि का चित्रण जैसे भरा पड़ा है। यथार्थवाद के नाम पर यह सब चल रहा है। यह जीवन में बदबू भी है और खुशबू भी। यह सत्य है, पर हम बदबू को दूर रखना या हटाना चाहते हैं, अपनाना नहीं। सुंदर और सुरुचि को हम जीवन में व्याप्त करना चाहते हैं, अतः कविता में उसी का आधिक्य होना चाहिए। कुरूप और विभत्स का चित्रण साभिप्राय होना चाहिए। ऐसा न होने से औचित्य की भरमार आज की रचनाओं में दिखती है। यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं, सिर पर सूर्य टीका टीक दोपहरी, लू लपट बहुत ही गहरी। यहाँ पर टीका टीक के स्थान पर ठीको ठीक होना चाहिए था तथा गहरी शब्द का प्रयोग लू लपट के लिए उचित विशेषण नहीं। दोपहरी से तूप मिलाने के लिए गहरी का प्रयोग किया गया है। लू लपट तीव्र, तेज या प्रखर हो सकती है। मुझ पर पत्थर रख दो या पहाड़ से लुढ़का दो, मेरी जर में मट्ठे की नदियां इति कर दो। यहाँ इति कर दो पद उचित नहीं है। इसके स्थान पर उड़ेल दो, बहा दो या रीति कर दो जैसे मुहावरे चल सकते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी प्रेयसी के अधेड़ हो जाने पर उससे विकर्षण का अनुभव करता हुआ चित्रित करता है। अब तुम लो सुन, रसोई में खदबदाती दाल तुम्हें बुला रही, आंगन में चिचियाती मुन्नी पुकार रही, जाओ भी कुर्सी के पीछे से ऊपर लदो ना, यो जी मचलाता है, गंध आती है आटे पसीने की। यह वर्णनोचित्तहीन है। जो एक बार प्रिय हो चुकी है उसके प्रति यह भाव उचित नहीं कहा जा सकता। जीवन का यह पक्ष तो सदा ही रहता है, पर प्रेयसी का पक्ष दूसरा है जो इसके साथ साथ चलता है। उसे कवि ने चित्रित नहीं किया, इस पक्ष का चित्रण औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। काव्य के सही रूप में प्रभावशील होने के लिए ही उसके विविध तत्वों में औचित्य का समावेश होना आवश्यक है। यों तो आचार्य भरत, भामह, दंडी, रुद्रट, कुंतक, आनंदवर्धन आदि ने भी अपने काव्यशास्त्रीय विचारों में औचित्य की चर्चा की, पर व्यापक और व्यवस्थित रूप से औचित्य तत्व का विवेचन आचार्य क्षेमेंद्र ने ही किया है। आचार्य क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य की बड़ी व्यापकता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए उनका कथन है, पदे वाक्य प्रबंधार्थे गुणोलंकरणे रसे, क्रियायां कारके लिंग वचने च विशेषणे, उपसर्गे निपाते च काले देशे कुलव्रते, तत्वे सत्वे प्यभिप्राये स्वभावे सार संग्रहे, प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्यथा सिसी, काव्यस्यांगेषु च प्राहुरे चित्त्यं व्यापी जीवितम्। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि औचित्य की व्याप्ति पद से लेकर प्रबंध और विचार तक हो सकती है। क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य के भेद हैं, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशिष्य के औचित्य संयोजन रूप। आज के संदर्भ में उपर्युक्त अनेक भेद व्यर्थ हो गए हैं। विशेष रूप से ये भेद संस्कृत काव्य में सार्थक थे, हिंदी काव्य के क्षेत्र में सभी रूप सार्थक नहीं। अतः आज की दृष्टि से औचित्य को हम निम्नांकित प्रमुख भेदों में देख सकते हैं, पदौचित्य, वाक्यगत, प्रबंधगत, अलंकारगत, रसगत, क्रियागत, विशेषणगत, देशकालगत, नामगत, प्रसंगगत, बिंबगत और विचारगत औचित्य। इन भेदों पर हम संक्षेप में साधारण विचार करेंगे। पदगत औचित्य, जहाँ किसी पद के प्रयोग में विशेष औचित्य प्रकट होता है उसे पदगत औचित्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अवधिशिला का उर्पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृघ जलधार। यहाँ पर अवधिशिला, गुरुभार, तिल तिल, जलधार पद में चमत्कार है। धार पद के प्रयोग में विशिष्ट औचित्य है, क्योंकि काटने के लिए पैनी धार का भी अर्थ इससे फूटता है। इसी प्रकार, बतरस लालच लाल के मुरली दई लुकाए, सौ करे भयहन हसे दैन कहे नट जाए। वाक्यगत, जहाँ किसी काव्य में वाक्य के प्रयोग का विशेष चमत्कार होता है वहाँ वाक्यगत औचित्य है। यथा, फागु की भी अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरा, भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नई अबीर की झोड़ी, छीनी पीतम्बर कमर से सु विदा दई मेरी कपोलन रोड़ी, नयन नचाई कही मुस्काए लला फिरी अयो खेलन होड़ी। इसमें अंतिम वाक्य का विशेष औचित्य है, जिसका यह अर्थ निकलता है कि अब फिर होली खेलने का नाम न लेना। उपर्युक्त छंद प्रबंधगत औचित्य का भी उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण है, छीमिया दाना रहित सा लाल पिछला दुबक गुजरा, और सूखे संतरे सा यह नया आया है पास, फट गया हो तला जिसका वह सजीली टोकरी, यह छूटती भी नहीं तीखी मिर्च सी यह नौकरी। प्रबंधगत, जहाँ किसी कथा प्रबंध के बांधने के कारण विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ प्रबंधगत औचित्य माना जाना चाहिए। यथा, आदमी अंधेरा, दोनों ही साथ साथ जन्मे, कितनी ही बातें दोनों के मन में किंतु उन्हें कौन जान पाता। आदमी अंधेरे का बड़ा अजब नाता, रोशनी में आदमी को झिझक बड़ी होती, सोचता है क्या पहने पैंट या धोती, रोशनी में संभल संभल चलते बात नहीं बनती, ला शरम विधि निषेध सिरा सिरा तनती। यहाँ पर आदमी का अंधेरे से अधिक गहरा नाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रबंध मांगा बांधा गया है। इसी प्रकार नीचे के उदाहरण में प्रातः काल के घाटी के दृश्य को मानवीय घटना चक्र के प्रबंध में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। प्रात धूप की जरताड़ी ओरनी लपेटे, अभी अभी जागी, खुमार से भरी नितांत कुमारी घाटी, इस कामातुर मेघ धूम के औचक आलिंगन में पिसकर रति श्रांता सी मलिन हो गई। अलंकारगत, जहां अलंकार प्रयोग के द्वारा कोई वस्तु भाव या विचार विशेष रूप से प्रभावशील होता है, वहां अलंकारोचित मानना चाहिए। उदाहरणार्थ, वत्सल छाती सी पहाड़ियां दूध पिलाने आतुरा, बच्चे सा सूरज सो जाता लेकर मुंह में आंचरा। यहाँ पर उपमा और रूपक अलंकारों के कारण प्रकृति का मानवीकरण हो गया है, जिसे काव्य में विशेष चमत्कार उपस्थित हो गया है। इसी प्रकार एक रूपक अलंकार का चमत्कार निम्नांकित पंक्तियों में देखा जा सकता है। सांझ के सिंदूर लिए आकाश में सरक आया छुदित बादल व्याल, लपलपाती दीर्घ विद्युत जीप जिसकी तुहिन शिखरों पर विशुद्ध सोई हुई स्वप्न डूबी हर किरण को चाट जाना चाहती है। रसगत, जहाँ किसी रस के प्रयोग से काव्य की पंक्तियाँ विशेष रूप से प्रभावकारिणी हो जाती है, वहाँ रसगत औचित्य मानना चाहिए। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। ये फूल सेज के चरणों पर धर लेने दो, मुझको आंचल में हर श्रृंगार भर लेने दो, मिटने दो आँखों के आगे का अंधियारा, पथ पर पूरा पूरा प्रकाश हो लेने दो, यह ठंडी ठंडी रात उन्हीं दिशा आलम में नींद भरी सी चले नहीं जाना बालम। उपर्युक्त पंक्ति में रस श्रृंगार का चमत्कार है। इसी प्रकार करुण रस के चमत्कार से युक्त नीचे लिखी पंक्तियां देखिए। दाने दाने को तरस आई अगणित आंखें, दो बूंद दूध के लिए ललक हिचकी लेकर हो गए मौन, माताओं की छाती विदीर्ण अवरुद्ध रह कंठ रह गई कलक, बेबरसे बिखर गए कितने साधों के धन, कृमि कीट सदृश फुटपाथों पर मनु की प्यारी संतान मिट गई बिलक बिलक। क्रियागत, जहाँ पर क्रियापदों के प्रयोग से काव्य में विशेष चमत्कार और प्रभाव आ जाता है, वहाँ क्रियागत औचित्य माना जाता है। उदाहरण, बता सखी अब क्या करूँ रूपी रात से रार, भय खाऊं आंसू पीऊं मानू मन मारूं झकमार। यहाँ पर अनेक क्रियापदों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार आ गया है। इसी प्रकार अंबर से बरस रहे रिमझिम, मनहरण निमंत्रण आलिंगन मीठी मुनहरों विश्चुंबन, कुंजों में छिप छिप छेर रहा दोसीजा कलियों का फागुन। विशेषणगत औचित्य, जहाँ विशेषण पदों के प्रयोग से काव्य पंक्तियों में विशेष चमत्कार उद्भासित हो जाए, वहाँ विशेषणोचित्य मानना चाहिए। आज की कविता में इसका विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। दुल्हन से सजा हुआ ड्राइंग रूम, सीने में बीती यादों का दर्द ले, महफिल के सोने फर्श सा मैं पड़ा हूँ, लहराती गाती टहनियाँ चहचहाते बसेरे, महकते फूल के साथ ले आंधी तो चली गई, धरा पर असहाय ठूठा सा मैं पड़ा हूँ। देश कालगत औचित्य, जहाँ देश और काल के वर्णन से विषय में विशेष चमत्कार आ जाता है, वहाँ देश काल औचित्य होता है। यथा, काले जंगल काले खेत काली मिट्टी सांवरी, धूप फूल दोनों ले आती रातें ओढ़े कांवड़ी, सूरजमुखी हुआ दिन छूकर मिट्टी लाल पठार की, सांझ पहनती दिन डूबे फड़िया सपनों के तार की, ऊपर धरती की छाती पर फूल चूनर की लालिमा, बीज कोख में रखने वाली नीचे रसमय कालिमा, लुगड़ा छापेदार लाल हंसली के चमके बीजरी, लहंगा स्याह कमर में पहने श्याम बर्तन की गुजरी। बिंबगत औचित्य, जहाँ बिंबों के संयोजन से उनके औचित्य द्वारा काव्य में विशेष चमत्कार आ जाता है, वहाँ बिंब औचित्य माना जाता है। उदाहरणार्थ, दूध से भीगे अभी तक चांदनी के गात, देह से चिपका बर्फ सा श्वेत शीत दुकूल, नखत वेनी में रहे उलझे जूही के फूल, बहाए कुछ लहरियों के साथ दूर अकुल, और यह शशि भेंट कमला ने किया जल जात, क्षीर सागर में नहाकर लौट आई रात। नाम औचित्य, जहाँ किसी विशिष्ट नाम के कारण अर्थ की विशेष व्यंजना होती है, वहाँ नाम औचित्य होता है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ दी जाती है। अमराई में दमयंती सी पीली पूनम कांप रही है, आदम का पुत्र बहुत भटका अंधेरों में, चंगेजी न्याय के खून भरे घेरों में, द्रौपदी सी चीखती है नारियां निर्वस्त्र, जिनके चीर दुशासन कहीं पर फेंक आया खींचकर। विचारगत औचित्य, जहां किसी विचार के कारण काव्य में विशेष चमत्कार आता है, वहां विचारगत औचित्य होता है। जैसे, आज मुझे लगता संसार खुशी में डूबा, माँ ने पाया अपना धन ज्यों बहुत दिनों का खोया, बहुत बड़ी कुंवारी लड़की को सुगर मिलो हो दूल्हा, मैल भरे दीवारों पर राजों ने फेरा चूना, किसी भिखारिन के घर में बहुत दिनों पीछे मंद जला हो चूल्हा। प्रसंगगत औचित्य, जहाँ किसी प्रसंग के संयोजन से अर्थ में चमत्कार आता है, वहाँ प्रसंगगत औचित्य होता है। यथा, लगता आज भी यह तेज चिनगारी गिरी थी जो उदास अशोक वन में मुद्रिका प्यारी। क्या सुदामा के स्मरण से कृष्ण की भी बात तुमको याद आई है? और यदि हाँ तो भला फिर आज भी क्या रुक्मिणी कांपी नहीं? ऊपर औचित्य के प्रमुख भेदों पर विचार किया गया है जो आधुनिक काव्य में संदर्भ में अधिक उपयोगी हैं। इनमें और इसी प्रकार हम अनेक रूपों में काव्य के अंतर्गत औचित्य तत्व का समावेश देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि काव्य की कोई भी विशेषता या गुण क्यों ना हो, उसके संपादन में तथा उसे प्रभावशील बनाने में औचित्य का निर्वाह परमावश्यक है। इसलिए भारतीय साहित्य में औचित्य का महत्व स्वीकार किया गया है। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में यद्यपि औचित्य का अलग से सिद्धांत रूप में विवेचन नहीं हुआ है, फिर भी प्रायः समस्त आचार्यों ने औचित्य का महत्व स्वीकार किया है। अरस्तु ने दृश्य, घटना, काल, भाषा के प्रयोग में औचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लांजाइन्स ने शब्द प्रयोग के औचित्य को काव्य कला का प्राण माना है। हॉरेस ने भी घटना, छंद, भाषा आदि के औचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी प्रकार दांते, पोप, मैथ्यू अर्नल्ड, आई ए रिचर्ड्स आदि ने भी औचित्य को अपने अपने ढंग से स्वीकार किया है। अतएव काव्य में औचित्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय समाप्त।